नमस्कार सोतो, छिंगड़ा वरेन से आपका दोस्त योगेश। क्योंकि जिंदगी जरूरी है, जल संरक्षण ग्रीष्मकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में और कई ऐसे जगहों पर लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की बड़ी किल्लत आ रही है। लोगों को दूर दराज क्षेत्र में जाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। ग्रीष्म ऋतु में भूगर्भीय जल स्तर में निरंतर कमी आने के चलते यह स्थिति आ रही है। क्या आज भी जल संरक्षण के लिए कितने प्रयास हो रहे हैं और हमें जल संरक्षण को कितना महत्व देना चाहिए? इसी विषय को, जल संरक्षण पर जानकारी देने के लिए और अपनी राय रखने के लिए आज हमारे साथ में धनश्री जी जुड़ी हुई है। धनश्री जी, मोबाइल आने पर स्वागत है आपका। ओ, सुन पा रहे हैं?
जी सर,
जल संरक्षण को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
मैं जल संरक्षण को लेकर यही संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं अपने घर से शुरुआत करती हूँ। जैसे जिस प्रकार अगर हमें प्यास लगी है और हम 1 गिलास पानी ले रहे हैं, तो उसमें से हम क्या करते हैं, 2 या 3 घूंट पानी पीते हैं और बाकी पानी फेंक देते हैं। इससे क्या है, पानी वेस्ट होता है। हम मतलब अपने घर से ही शुरुआत करके पानी वेस्टेज को रोक सकते हैं।
क्या आपके जो भी आपके क्षेत्र में स्कूल हो, स्वास्थ्य विभाग हो, आंगनवाड़ी केंद्र हो, यहाँ पर बच्चों को स्कूलों में और क्या स्वास्थ्य विभाग की जो मेडिकल है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मरीजों को पानी उपलब्ध हो रहा है पीने के लिए?
हाँ जी, इधर पर्याप्त मात्रा में सभी मरीजों को स्कूल में, स्वास्थ्य केंद्रों में पानी उपलब्ध हो रहा है।
जल संरक्षण को लेकर और क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि आने वाले दिनों में ऐसी आपदाओं से बचा जा सके?
सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पानी का है जितना यूज हमें उपयोग, मतलब पानी का हम जितना कम उपयोग कर सके उतना हमें करना चाहिए, और ज्यादा वेस्ट पानी नहीं करना चाहिए। और देखा गया है कि लोग है ना शावर से नहाते, बल्कि हमें 1 बाल्टी पानी उतने में सीमित है, उतने में हमें नहाना चाहिए। और शावर से क्या होता है, हम जितना पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा पानी वेस्ट होता है, तो उससे हम ये भी मतलब रोक लगा सकते हैं। एक
वृक्षारोपण का बड़ा एक ये चल रहा है, तो वृक्षारोपण संरक्षण के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
वैसे तो आज देखा जाए तो आज पृथ्वी दिवस है, तो मैं यही कहना चाहूंगी सभी से कि चाहे आपका जन्म दिवस हो, आपकी शादी की एनिवर्सरी हो, या फिर बच्चे का जन्म हुआ हो, तो आप अधिक उसको यादगार बनाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। जैसे कि मैं अपने हर जन्म दिवस पर 10 या 11 पेड़ रोज, मतलब जन्म दिवस पर लगाती हूँ।
इसको संरक्षण को लेकर संरक्षण को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे?
संरक्षण को लेकर यही संदेश देना चाहूंगी कि अगर हम मतलब जिस इलाकों में पेड़ काटे जा रहे हैं उनको मतलब रोकना चाहिए, और अगर हमने पेड़ लगा है तो उनकी पूरी पूरी देखभाल करनी चाहिए। जैसे रोज सीमित समय पर पानी देना चाहिए उनको, और भी हम अधिक प्रयास कर सकते हैं, और गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित कर रही है।
वर्षा का जल का संरक्षण किस तरह करके हमें रोजमर्रा के जीवन में जल का उपयोग करना चाहिए हमें?
वर्षा जल का अगर हम बात करें तो एक उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है वाटर हार्वेस्टिंग। इसकी मदद से भी हम बहुत सारा अपना जल बचा सकते हैं।
जिस तरीके से मानव ने अपने स्वार्थ के लिए अवैध उत्खनन किया है, चाहे कई हो नदियां हो या फिर कई खदानों में अवैध उत्खनन हो रहा है, तो इससे भूगर्भीय जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और इससे आने वाले दिनों में इंसानों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?
जैसे भूस्खलन हो रहे हैं या फिर भू वो अपने खदानों में बहुत सारे मतलब पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो बहुत गहरे गहरे गड्ढे कर रहे हैं जिससे कि पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है, तो इस कारण हमारे क्षेत्र में वर्षा कम हो रही है, और कहीं कहीं पे बाढ़ आती है, भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, ये समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। तो अगर हम बात करें वर्षा जल की, तो हमारे जो वर्षा जल का पहले पहले के समय में जो स्तर रहता था वो आजकल नहीं है। मतलब आजकल अगर हम पहले के समय में कुआं खोदते थे तो पानी लगता था, लेकिन अभी हम कुआं खोदते हैं तो पानी लगने की संभावना नहीं है।
उसके क्या कारण हैं? क्यों ऐसी समस्या आनी पड़ी हमारे सामने?
इसकी मतलब इसका प्रमुख कारण यही है कि हम इसका प्रमुख कारण है कि पेड़ काटे जा रहे हैं, क्योंकि जो पेड़ है वो वर्षा को आकर्षित करते हैं, मतलब बादल को आकर्षित करते हैं जिससे कि वर्षा हो रही है। तो इसका प्रमुख कारण यही है कि पेड़ का कटना।
सरकार द्वारा जलाशय हो या फिर छोटे बड़े डैम और मनरेगा योजना के अंतर्गत पंचायत स्तर पर खेतों में बांध बनाने की प्रक्रिया चलती है, तो इसको भूगर्भीय जल स्तर में कितना सुधार हो सकता है और सरकार को इसके लिए और भी अधिक किस तरीके से प्रयास किए जाने चाहिए?
जैसे खेतों में बाढ़ बनाते हैं तो उससे क्या करते हैं, मतलब जब वर्षा का जल वर्षा आती है तो हम इससे पानी को एकत्रित करके खेतों में पहुंचा सकते हैं, तो इससे वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। और अगर सरकार इसके लिए बहुत सारे उपयोग कर रही है, जैसे कि पहले तो सरकार खुद बोलती है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए हमें और इसके देखभाल भी करनी चाहिए। और जैसे सरकार की बात करें तो फिर वो नदी तालाबों की सफाई भी करवाती है जिससे कि उसकी गंदगी नष्ट हो जाए।
आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है अभी पेयजल स्थिति को लेकर, और आपके क्षेत्र में कोई कौन सा जलाशय है जो पर्याप्त मात्रा में लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है?
यहाँ पे मोहे डैम है जो हमारे पांडुना निवासियों की जल की पूर्ति करता है।
एक किसान किस तरीके से अपने फसलों को भी उगाए और जल संरक्षण में योगदान दे, ऐसी कोई तकनीक उपलब्ध की जानी चाहिए ताकि किसान भी कम से कम जल में अपनी फसलों को उगा सके और आधुनिक खेती की बजाय अभी वर्तमान जो परिवेश है इसको ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण में योगदान दे सके?
नहीं, इसके बारे में तो जानकारी नहीं है।
किसान जिस तरीके से फसलें उगाता है तो उसमें कम फसलें व कम यानी कम जल वाली फसलें उगाए ताकि सरकार द्वारा इसके लिए भी कोई प्रयास किया जाए, जो कि ठिबक सिंचन है, स्प्रिंकलर है, ऐसे संसाधनों का उपयोग करके किसान भी एक जल संरक्षण में योगदान दे सकते हैं, तो इसमें कितना हद तक किसान आगे बढ़ सकता है? साथ ही ऐसी जो भी योजनाएं हैं वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा, तो सरकार को किसानों के लिए ये सुविधाएं किस तरह उपलब्ध की जानी चाहिए?
मतलब मैं यही कहूंगी कि जैसे मौसम, जैसे जलवायु के हिसाब से किसानों को फसल उगाना चाहिए, सो उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी।
जी, तो ये थी धनश्री जी जिन्होंने मोबाइल वाणी के माध्यम से जल संरक्षण को लेकर और जिंदगी में जल का कितना महत्व है इसके बारे में मोबाइल वाणी के साथ जानकारी साझा की। धनश्री जी, मोबाइल वाणी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।
बड़ा वाले सबका दोस्त योगेश।